శ్రీభాగవతం కెంటు దస్ అధ్యాయ 18 శ్లోక సంఖ్య 27. వక్త ఆదియోగ ప్రభు. డేట్
17 ఫిబ్రవరి 2015. దేశాద్భుతం హలధర సదత్ర సత్. మాతాజీ,
నిరీక్షతురలంబరేచరీతృకుటీతటోగ్రద్రష్టకం
జలచికం కటక కిరీటకుండల దేశాద్భుతం హలధర ఇర్సదత్ర సత్. నిరీక్ష తత్పుర లంబరే చర ప్రదీప్త దృగ భ్రూకుటి తటోగ్ర ద్రష్టకం జ్వలచికం కటక కిరీట కుండల నిరీక్ష తత్పురలంబరే చర ప్రదీప్త దృగ్ భ్రూకుటి తటోగ్ర ద్రష్టకం జలచికం కటక కిరీట కుండల దేశాద్భుతం హలధర ఇర్సదత్ర.
तो ये श्लोकों के शब्दार्थ कृपया बोलिए. निरीक्ष देखकर तत् उस प्रलंबासुर का बपू शरीर अलम तेजी से अंबरे आकाश में चरत विचरण करते प्रदीप्त प्रज्वलित दृक् आँखें भ्रूकुटी अपने भौंह पर के गुस्से का अपनी भौंह पर के गुस्से का तट किनारे पर उग्र भयानक दृष्टकम दांतों को ज्वलत अग्नितुल्य सिखम बाल कटक अपने बाजूबंध कीरिट मुकुट कुंडल तथा कुंडलों के तेसा तेज से अद्भुतम आश्चर्यजनक हलधर हल धारण करने वाले बलराम ईर्षत टुक थोड़ा अत्रसत भयभीत हुए.
ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్ పర్పడి డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల ప్రభుపాదికి శిష్యం కే ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాదికి ట్రాన్స్లేషన్.
जब हलधर भगवान बलराम ने आकाश में विचरण करते हुए उस असुर की जलती हुई आंखें अग्नितुल्य बाल भौएं तक उठे भयानक दांत तथा उसके बाजूबंद मुकुट तथा कुंडलों से उत्पन्न आश्चर्यजनक तेज युक्त विराट शरीर को देखा तो कुछ कुछ भयभीत से हो गए। तात्पर्य, श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान बलदेव के तथाकथित भय की व्याख्या इस प्रकार की है। बलराम एक सामान्य ग्वाल बाल के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, अतएव इस लीला भाव को बनाए रखने के लिए वो असुर के भयानक शरीर से कुछ कुछ विचलित हो गए। दूसरे यह कि वो असुर कृष्ण के ग्वाल मित्र के रूप में प्रकट हुआ था और कृष्ण ने उसे मित्र मान लिया था, अतएव बलदेव उसको जान से मारने में हिचकिचा रहे थे। बलराम की चिंता का एक कारण यह भी हो सकता था कि यह वास्तव में ग्वालवाल के वेश में असुर था, तो हो सकता है कि उसी क्षण ऐसा ही कोई दूसरा असुर कृष्ण पर भी आक्रमण कर रहा हो। इस तरह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव ने भयावने प्रलंबासुर के समक्ष कुछ कुछ शिथिल होने की लीला प्रकट की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप स्वपदान्तिकम् वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्युतंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते पेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्री श्री राधा गिरिधरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान बलराम का जो असुर को देखा और देखने के बाद उनके हृदय के भीतर थोड़ी सी भय संचार हो रही है। ये भय कैसे? ये सांसारिक भय तथाकथित भय बलराम का एक अभिनय है, लीला का अंग है कि भगवान जब असुरों के सामने कुछ भयभीत सा जान भी पड़ते हैं, असुर के सम्मुख भगवान भयभीत अवस्था में होते हैं, तो ये समझना है कि ये उनका लीला है। भगवान किसी को भय नहीं करते हैं, यद बेभीत स्वयं भय साक्षात भय उनके उनको भय भय करते हैं। जो साक्षात भय है तो भगवान को भयभीत होते हैं, भगवान को देख करके भयभीत होते हैं, तो फिर वो किसको भय करेंगे। तो इस संसार में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, वो जानते नहीं हैं भगवान को। तो फिर उनको बताने से भगवान के विषय में, तो भगवान का भक्ति करने के लिए वो प्रयास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जानते हैं ये भगवान है, जानते हैं उनका शक्ति को, देखते हैं सब कुछ, दर्शन करते हुए भी भगवान को नहीं मानते हैं। क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी आज के प्रसंग में ये जो प्रलंबासुर था, ये प्रलंबासुर का जो रूप है, उनका जीवन, उनका मनोवृत्ति, उनका भावना चेतना, इसके विषय में कह रहे हैं। तो ये संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को जानने के बाद भी वो भगवान को मांगते नहीं है, वो नास्तिक होते हैं। जानते हैं, जानने के बाद भी वो भगवान का प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि भक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भक्त लोग आसानी से भगवान का ये शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन असुर लोग जो होते हैं वो जानबूझकर, देखकर, सुनकर ये भगवान का भगवत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? एक ही कारण है, वो है वो भगवान के प्रति ईर्ष्यान्वित है। असुर लोग जो होते हैं वो भगवान को हमेशा हमेशा के लिए ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो भगवान का शक्ति, भगवान का भगवत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन भक्त लोग बड़े आसानी से भगवान को जान लेते, ये मेरे प्रभु है, ये भगवान है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी आज ये जो उनका कहना है, ये प्रलंबासुर कैसा था, जो असुर लोग होते हैं उनका जीवन कैसे होती है, और उनके चरित्र, उनके मनोवृत्ति, उनका भावनाएं ये किस प्रकार का होती है, ये बात को विशेष करके श्रील सुखदेव गोस्वामी आज के प्रसंग में बताना चाहते हैं। असुर लोग का जीवन कैसे होती है, वो संपूर्ण, उनका जीवन संपूर्ण इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित होती है, और इंद्रिय तृप्ति के आधार करके वो सारा जीवन जीते हैं। लेकिन भक्तों के जीवन भक्ति मार्ग में संग, भक्ति मार्ग में जो संग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि भक्त लोग जानते हैं मेरे जीने की जो सहारा है ये भक्ति है। भक्त लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, भक्ति मेरा प्राण जैसे है, मेरा जीवन है, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बात में बताते हैं कि साधु संगे हरि नाम ये मात्र चाय, संसार जीनते आर कौन बस्ती नाय। साधु ये संसार को जीनना है, ये संसार को जीतना है, जीतना मतलब ये संसार के परे जाना है, तो मार्ग क्या है, उपाय क्या है, साधु संगे हरि नाम, साधु संगे हरि नाम ये मात्र चाय, संसार जीनते आर कौन वस्तु नाय, और कोई वस्तु नाय नहीं है। तो साधु के संग में यदि हमें हरि का नाम लेते हैं, साक्षात कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और आसानी से संसार के परे हमें चले जाएंगे। ये संसार को जीनना है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें सूत्र बताते हैं। कोई संसार को पार करना है बड़े आसान है, कलयुग में संसार को पार करना बड़े आसान है, और योगों की अपेक्षा, और योगों की तुलना में दिखा जाए कि कलयुग में भगवान को, भगवत प्राप्ति यदियों आसान है फिर मुश्किल है। हरिनाम कितने सरल है, वो कोई भी कर सकता है। भगवान का नाम इतने सरल है, इतने सहज है, एक बच्चा भी, बालक भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन सब कोई नहीं कर सकते। कोई भी कर सकता है लेकिन सब कोई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो लोगों में हरि नाम नहीं होती है जो लोग भगवान का नाम को माध्यम बना करके पाप कार्य में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा हरि नाम नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम के बल में पाप प्रवृत्ति रखना, पाप कार्य करना, नाम के बल में हरि नाम करेंगे और हरि नाम के आश्रय लेते हुए और कुछ करेंगे, तो ये ऐसे लोगों के द्वारा हरि नाम नहीं होगा, भगवान का भजन नहीं हो सकती। यदि कोई भगवान का भजन करना चाहते हैं तो संपूर्ण रूप से पाप से मुक्त होना चाहिए, ये भगवान ने कंडीशन रख दिए, शर्त रख दिए, तेषां तु अंतगत पापम जननाम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्वमो निर्मुक्ता भजन्ते। भजन वही कर सकता है जो संपूर्ण रूप से हृदय से, मन से, वाणी से, अपने वचन से, काय से, क्रिया से, अपने भावना चित्तवृत्ति से संपूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति दृढ़ होकर मेरे चरण कमल का ध्यान कर सकता है। लेकिन असुर लोग, उनका जीवन कैसे ना संपूर्ण, उनका जीवन वो जानते हैं, इंद्रिय तृप्ति ही जीवन की लक्ष्य है। जो लोग असुर होते हैं वो जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करना, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर में मौज करना, ये असुर लोगों का ज्ञान है। और कुछ उसके परे जो कि सुख है, वो रहस्य वो आसुरिक भावना विशिष्ट लोगों को पता नहीं है। तो ये मैं बताया कि संग भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी एक मतलब बल है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अजय मिलने आप जानते हैं इतने पाप कर्म कर लिए थे, लेकिन संग का जब प्राप्त हुआ, भगवान के पार्षदों का जब दर्शन हुआ उनको, तत्क्षणात अजामिल पूरा उनका सारा जीवन पाप कार्य में लगा हुआ था, लेकिन जैसे भगवान भगवत भक्तों की संग उनको मिला, तुरंत सारे पाप करे सारे संसार को छोड़ दिए, हरिद्वार में जाकर के भजन करके। हाँ, वही जो भक्त लोग उनको दर्शन देने के लिए आए थे वैकुंठ से, वही भक्त लोग आकर के उनको भगवत धाम लेके गए। ये भक्त लोग हमको भगवत धाम लेके जाएंगे और कोई नहीं। इसलिए साधु संगे हरिनाम, हरिनाम का जो वीर्यवती स्वरूप है तब प्रकट होती है हमारे मन में। हमारे मन तभी वो वस्तु को धारण कर पाती है, हमारा मन हमारा चित्त वो चीज को तब देख पाता है जब हमें निम्मसर साधुओं की संग करते हैं। भगवान की कथा जो वीर्यवती है, इतनी शक्तिशाली है, तब हमारा अनर्थ को दूर करने के लिए सक्षम होता है जब एक निष्पाप निर्मल निमस्सर साधु के मुख से हमें हरि कथा को श्रवण करते हैं, तभी जाके हमारे हृदय में जो सुप्त ज्ञान है, भगवान को दर्शन करने की जो क्षमता है, जो लोभ है वो बढ़ जाती है। वो लोभ कौन बढ़ाते हैं ना, साधु। हाँ, तो मैं ये कहा, ये असुर लोग जो होते हैं ये शरीर का सुख लेने के लिए चुस्त रहते हैं, लेकिन इस शरीर के बाद में एक जो जीवन है उन जानते नहीं है। ये शरीर का एक दिन पतन होगा, ये शरीर का पतन होने के बाद में जो एक जीवन है ये असुर लोग नहीं जानते। बस ये जो मिला, बस भोग कर लो, मजा कर लो, ले लो, कुछ कर लो, आगे कौन देखा है, क्योंकि वो आंखें नहीं है। भौतिक आंखों के द्वारा जो ऐसे ऐसे ऋषि लोग होते हैं, त्रिकालदर्शी, कैसे कहां से ये होती है भगवान का भक्ति से। लेकिन ये असुर लोग इस जीवन के आगे और कुछ है वो नहीं जानते। कर्म क्या होती है, कर्म का नियम कैसे लगती है, कर्म का सिद्धांत क्या है, वो कुछ नहीं जानते। ऐसे कि जीवन का अंत तक वो भोग करने की प्लान योजना बनाते रहते हैं। ऐसे कि हॉस्पिटल में आईसीयू में जाकर के भी वो डॉक्टर को प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर को प्रार्थना करते हैं, ओ डॉक्टर साहब प्लीज और कुछ दिन मुझे जीवित रख दीजिए, मेरा बहुत कुछ काम करना बाकी है, मुझे वो काम को सब पूरा करना है, मगर मुझे और मृत्यु के बेड में आईसीयू में जा करके, ये असुर लोग आईसीयू में जा करके भी डॉक्टर को ऐसे बोलते हैं, मुझे और कुछ दिन जीवित रख दीजिए, मुझे मेरा बहुत काम बाकी है, मुझे सब पूरा करना है। ये असुर लोग जो होते हैं ना, कोई धर्म कर्म कोई नियम को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब दिखाते हैं बहुत बड़ा धार्मिक, हमें फलाना संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, हमें वहां पे दान दे रहे हैं, बहुत बड़े हमें ध्यान कर रहे हैं, भगवद गीता क्या है, हम सब कुछ मालूम है, ये है सह है, हर मनु संहिता में मनुष्य को कैसे जीना है तो एक सूत्र बताया गया है, जो मनु संहिता है एक लॉ बुक है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है उनको कैसे हमें मैनेज करना है, चलाना है, उसका एक लॉ बुक है, मनु जी मनु संहिता में बताएं, जैसे भक्तों के लिए वैष्णवों के लिए एक बुक है, किताब है, सूत्र बुक है, सनातन गोस्वामी पाद जी के द्वारा लिखा गया हरिभक्ति विलास, कैसे एक वैष्णव को बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, उनका चाली चलन कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, हाँ तुलसी में कौन सा तरफ आचमन करना चाहिए, कौन सा तरफ जाके पानी जल अर्पण करना चाहिए, ये सारे बात छोटी सी छोटी बात है ना श्रील सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में रखे हैं। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर जो मिला है मनु संहिता में सारे बातें बताया गया है, लेकिन ये असुर लोग क्या करते कर देते हैं, उसको सबको मिक्स कर देते हैं, हाँ क्या पुरुष क्या है स्त्री क्या है सब एक ही है, सब खिचड़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन पुरुष स्त्री समान नहीं होते हैं, स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, शास्त्र में वैदिक साहित्य में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दिया जाती है, बताया गया है वैदिक साहित्य में, लेकिन आजकल के असुर लोग अपने इच्छा को पूरी करने के लिए स्त्रियों को एक ये बनाया, हाँ जैसे भगवान राम सीता जी से अलग हुए असुर आके कितना गड़बड़ कर दिया, सीता जी से जब राम लक्ष्मण दूर हो गए तो ये असुर आके कितना हंगामा कर दिया, इसीलिए माताओं के जो स्त्री होते हैं उनको कभी भी उनको हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए, उनको हमेशा सुरक्षित सुरक्षा के भीतर रहना चाहिए। पहले समय राजा घर के जो होते थे वो एकदम पूरा उनको कोई देख नहीं पाता था, आजकल के ऐसे कौन पुरुष है कौन स्त्री है पता भी नहीं चल पाता है, ये पुरुष है कि स्त्री है, उनका पहन ठन ये क्या बात सब एकदम, हाँ ये कलिजुग का बहुत बड़ी प्रभाव है लक्षण है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य वो अपने में इतने ऐसे गोल मिल जाएंगे, कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है कौन वैश्य कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए कलिजुग में सब शुद्र है। कलिजुग में आगे जाके ऐसे होगा, हाँ जो ये तो चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट है करके कुछ बचा है, लेकिन कलिजुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा शूद्र गादी में बैठ करके भगवत गीता का संदेश प्रदान करेगा और ब्राह्मण नीचे बैठ करके सुनेगा, ये कलिजुग में आगे जाकर होने वाली है। तो इसी प्रकार में क्या हाँ मनु संहिता के अनुसार मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ये सारे शास्त्र में बताया गया है। जब शास्त्र के मर्यादा को कोई उल्लंघन कर देता है तो पशु बन जाता है, कि पशु शास्त्र क्या है उनको वो ज्ञान मालूम नहीं है। हाँ आजकल के स्कूल कॉलेज में क्या शिक्षा दिया जाती है, आजकल के स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है ये एक सर्प के मस्तक के मणि के समान है, मणि कितने कीमती चीज है लेकिन है कहाँ पे, एक सांप के सर के ऊपर। ठीक उसी प्रकार आजकल के जो स्कूल कॉलेज के जो विद्या सिखाते हैं जो बच्चों को, वो कैसे स्वभाव उनके मनोवृत्ति कैसे होते हैं, जो आजकल के बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ कम से कम वहां से निकलने के बाद वो क्या उनका इच्छा क्या रहता है, उनका लक्ष्य क्या है, कैसे पैसा कमाना है और पैसा कैसे भोग करना है। स्कूल कॉलेज से बच्चे लोग जब निकलते हैं तो निकलने के बाद उनका लक्ष्य क्या रहती है, कैसे मैं पैसा कमाऊं, अब पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे कुछ किसी को मर्डर करना है, किसी को झूठ बोलना है, किसी को धोखा देना है, यही तो हो रहा है कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को धोखा दे करके पैसा कमाया जाए, ये क्या एक कैसे प्रवृत्ति है, असुरी की प्रवृत्ति है, लोगों को चीटिंग करके धोखे में डाल के जो चीज कमाया करा क्या जाता है ये असुर लोग करते हैं, जो नहीं है वो है करके ये दिखाते हैं, और आज के समय यही ज्यादा से ज्यादा यही हो रही है। कम से कम जो पाठ पढ़ाया जा रहा है कम से कम मनुष्यता बना वो भी नहीं हो रहा है, भगवान का भक्त बनना दूर कम से कम मनुष्यते बने ना ये भी नहीं होता है, आजकल जो पाठ पढ़ाया जाता है वो कम से मनुष्य भी नहीं बन पाते। पहले समय में गुरुजी अपने गुरुकुल में कई सारे छात्रों को रखते थे और अकेले गुरुजी अकेले ने हजारों संख्या में शिष्य गुरुजी के पास रहते थे, कहाँ से ये बातें होती थी, अकेले गुरुजी इतने हजारों शिष्यों का अकेले सब खाना पीना पिलाना उनका कपड़े उनका रहना अपना घर के बत्ती जलाना तो ये सारे अकेले गुरुजी को ये सारे प्रबंध करना पड़ता था, ये कैसे होता था और ऐसे गुरुजी के
गुरु गृह से जो बच्चे निकलते थे कितने बड़े भगवत भक्त बन भगवान का भक्त बनते थे, कितने बड़े चरित्रवान बनते थे, कितने बड़े देश भक्त बनते थे, कहाँ ये सब। हाँ लेकिन आजकल के जो सरकार है, तो गो रक्षा के नाम पर गो हत्या के आदेश दे चुके हैं। वो क्या गो रक्षा करेंगे, अपने रक्षा नहीं कर पा रहे। जब बंद गाड़ी में निकलते हैं तो दो चार आगे दो तीन गाड़ी तो पीछे दो तीन गाड़ी उनके रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। जो राजा होते हैं, हाँ, राजा के लिए सारे प्रजा है। गो हत्या का मतलब मानव सभ्यता का विनाश। गोवध गोहत्या मत अर्थ ये होता है मानव समाज का विनाश। हाँ वही हो रहा है आज के समय में। मनुष्य कैसे एक आए थे कल परसों, एक पुलिस डिपार्टमेंट के एक भक्त आए थे, वो बता रहे थे, प्रभु जी मैं बोला क्यों आप नहीं आ पा रहे ना, प्रभु जी क्या करें, इतना सब क्राइम बढ़ गया, इतना सब वीक, हर हफ्ता में तीन सुसाइड केस आ रहा है हमारे हाथ में, छोटी छोटी बात में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों ये सब गलतियों में क्यों कर रहे हैं। एक ही कारण है हम भगवान को भूल गए। एक ही गलती की वजह से कितना गलतियां में कर रहे हैं, भगवान को भूल गए। भूलने के कारण आज सारा संसार भ्रष्ट हो चुकी है, सारा संसार पशु जैसे जीवन बिता रहे हैं। मांस खाना, शराब पीना, ये कौन सा अच्छी बात है, भगवान का नियम का विरोध है। और भगवान का नियम का विरोध जो करता है वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। पहले समय जो राजा लोग होते थे उनको कोई भी जाके आराम से मिल पाता था, आजकल के राजाओं को मिलने के लिए नहीं। भगवान राम जब राजा थे, हाँ, एक कुत्ता भी उनका दरबार में गया था अपने हक मांगने के लिए। भगवान स्वयं जब ये संसार में आए थे, देखो कैसे राज करना है। लेकिन कलयुग में साहब जैसे ऐसे लोग ऐसे ऊपर जाएंगे, और ऐसे लोग जब ऊपर जाएंगे और कौन शांत, किसको शांति मिलेगा। हाँ वही हो रहा है, सब अशांत है शारीरिक दृष्टि से। लेकिन भगवान राम जब राजशासन कर रहे थे, किसी को ना मानसिक ना शारीरिक ना कोई प्रकार का पीड़ा न थी प्रजाओं में, लोगों में सारे प्रजा सुखी थे, आराम से जीवन यापन कर रहे थे। और भगवान राम जब ये संसार छोड़ करके अपने धाम जाने जा रहे थे तो वशिष्ठ मुनि ने उनको कहे, बस आप जा रहे हो लेकिन ये सारे अयोध्यावासी को आप अपने धाम में लेके जाओ। वशिष्ठ मुनि के आदेश को स्वीकार करके भगवान राम ने सारे अयोध्यावासी को अपने धाम लेके गए थे। और भगवान राम गए सरयू नदी के, जैसे ही डूब लगाए तो भगवत धाम का चले गए। और भगवान को अनुसरण करते हुए जितने सारे उनका प्रजा थे सरयू नदी में डूब लगा रहे थे, सारे के सारे भगवत धाम जा रहे थे, सारे के सारे। ये कैसे धर्म, एक ही चीज है धर्म ही न पशु है। हमें एक ही काम करना है, भगवान का भक्ति सब मिलेगा। जत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पर भगवान है और भगवान के भक्त है वहां पर सब कुछ है। जहां पर भगवान भगवद गीता में ये बात है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और भगवान के भक्त अर्जुन है वहां पर सब कुछ है, विजय श्री स्वास्थ्य सौंदर्य सब कुछ वहीं पर है। एक ही काम करना है हमारा, वही काम करना है, हम भगवान को हमारे जीवन में बुलाना है, सब कुछ मिलेगा। अर्जुन ने यही किया था, हाँ भगवान मुझे आप ही चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, मुझे आपका सेना चाहिए। अर्जुन ये क्या कि भगवान भले आप न लड़ो लेकिन आप ही चाहिए। ये भक्तों का एक बहुत बड़ा गुण है। यही बात को कुंती महारानी भी कहते हैं, आपका चरण कमल यहाँ पर है करके सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आप जब चले जाओगे ये राज, इतना बड़ा राज सब श्रीहीन हो जाएगा। इतने बड़े सुख मिलने के बाद यदि वो सुख में आप न हो फिर ये सुख किस काम का। कुंती महारानी अंत समय में भगवान के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। भगवान जब पांडव को राज दे करके अपने घर जा रहे थे तो कुंती महारानी, आप जा रहे इतना बड़ी सुख की काम का, जो सुख में आप नहीं हो तो फिर ये सुख किस काम का हमारा। तो वो तो अच्छा था जब जंगल में हमें इतने सारे दुख झेल रहे थे, वो तो अच्छा समय था क्योंकि वो समय आप हमारे साथ थे। इतने बड़े बड़े भक्तों के जीवन का जो आदर्शमय जीवन है उसको हमें सीखना है। तो ये प्रलम्बासुर जो था बहुत बड़े असुर था, भगवान को अपने भक्तों से अलग करना, अपने मित्रों से अलग ले जाना चाह रहा था। और ये प्रलम्बासुर जब भगवान बलराम को दूर ले जा रहा था तो भगवान अपने जान के, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ वो सब कुछ जानते हैं, भक्तों को जानते हैं आजकल के समाज की स्थिति क्या है। लोग मंदिर नहीं आ पाते, उनके पास इतने भी शक्ति नहीं है कि घर छोड़ करके मंदिर में जाएं, इसलिए भक्त लोगों को जाना पड़ता है। क्या मृदंगा करताल कुबजी और झुमका जांबे लेकर के उनके घर में जाते हैं और वहां पर सुर मचाते हैं हरे कृष्ण, तब जाके वहां थोड़ा चांगा होते हैं। इतने बीमार हैं लोग, घर से निकल ही नहीं पाते भगवान का यहाँ आने के लिए, भक्तों को जाना पड़ता है। मृदंग लेकर जो बजाते हैं खूब जोर से, माया भागती है। जब कोई बहुत बीमार हो जाता है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं आ पाता है, डॉक्टर को स्वयं जाना पड़ता है वो मरीज के पास। तो ये वर्तमान के समाज की अवस्था है। तो ये प्रलम्बासुर जब भगवान बलराम को अपने भक्तों से अलग लेके जा रहा था तो बलराम को पता हो गया ये और कोई नहीं, ये के असुर है। तुरंत भगवान अपने दिव्य प्रभाव को प्रकट किए, और जैसे भगवान अपने दिव्य प्रभाव को प्रकट किए तो भगवान का दिव्य प्रभाव के सामने ये असुर का प्रभाव टिक नहीं पाया। भले उन्होंने गोप बालक वेश बना करके ब्रज में प्रवेश किया, भगवान के मित्रों के साथ, मित्रों के ग्रुप में, दल में प्रवेश किया था, लेकिन भगवान जब अपने दिव्य प्रभाव प्रकट किए फिर ये असुर का प्रभाव नहीं रह पाया, नहीं रहा। तो जब असुर अपने स्वरूप को प्रकट किया, विशाल का शरीर, उनका आंखें ऐसे, क्योंकि इनका असुर ऐसे होते हैं, जो असुर है ना ऐसे, उनका खान पान ऐसा होता है, उनका मति चित्तवृत्ति ऐसा होता है। तो अपना स्वरूप जब प्रकट किया तो बलराम देखिए अरे ये कौन है, थोड़ा प्रलम्बासुर को देख करके बलराम थोड़ा सोच में पड़ गए, ये मेरा कृष्ण का ग्रुप दल में था और कृष्ण उनको मित्र मान लिया था और गोप बालक बन करके था, ये क्या है सब। थोड़ा भगवान कंफ्यूज नहीं होते हैं, दुविधा में नहीं पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी लीला मात्र से, लीला दृष्टि से वो ऐसे कुछ करते हैं। तो ये तो मेरा कृष्ण के दल में था, ये तो कृष्ण ने उनको मित्र मान लिया था, फिर वो कैसे। फिर आखिर में बलराम जी को पता चला ये और कोई नहीं है, ये असुर है। फिर बलराम अपने बल शक्ति का प्रयोग किए, हर बल शक्ति को प्रयोग करके अगले कल के हमें जानेंगे ये प्रलम्बासुर क्या है और भगवान बलराम उनको कैसे वध किए। जब कल हमें प्रलम्बासुर का वध का बात को सुनेंगे तो हमारे हृदय में जो प्रलम्बासुर रूपी अनर्थ बैठा हुए, जब सुनने मात्र से यहाँ पर बैठा हुआ अनर्थ का मृत्यु हो जाएगा। वहां पर प्रलम्ब का बद का लीला को जब हम श्रवण करेंगे, हमारे हृदय में जो प्रलम्ब छुप करके कहीं कोने में बैठा है उनका भी मृत्यु कल होने वाली है, इसलिए कल सुनना है। तो आज एक महान वैष्णव का बहुत सुंदर दिन है, शिवरात्रि है, अशिवरात्रि है। तो नदियों में श्रेष्ठ गंगा, देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत भगवान, और वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णवायाम यथा शंभु। और महान बन गए शिव जी क्यों ना, उन्होंने भगवान का चरण कमल, चरणोद्योग को अपने मस्तक में धारण कर रखे थे। भगवान शिव जी तो महान है, वैष्णव में श्रेष्ठ है, और महान की किस लिए बन गए ना, उन्होंने अपने मस्तक में भगवान का चरण दुख धारण करके रखे थे, इसलिए उनका नाम है गंगाधर। गंगा क्या है? भगवान के चरणामृत है। हाँ, भगवान का चरणामृत ये कलियुग में प्रभावित हो रहे, ये तीनों लोगों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। यहीं पर रह करके गंगा का नाम यदि कोई लेता है वो शुद्ध हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा इतने कलियुग में गंगा और गोवर्धन इतने शक्तिशाली है, जब तक ये धरती पर गंगा और गोवर्धन है तब तक कली अपना प्रभाव आपको दिखा नहीं पाएगा। गंगा इतना शक्तिशाली है, गंगा का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। यदि हम पात्र न बने, गंगा अपना कृपा देने के लिए कृपणता नहीं करते हैं। गंगा का किनारे आंब का पेड़ भी है और नीम का पेड़ है। गंगा अपना जल और दोनों को दे रहे हैं, लेकिन अपने स्वभाव, जिस प्रकार ये प्रलंबा इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण बलराम का संग किया, ब्रज का संग किया, उनके भक्तों की संग किया, लेकिन अपने स्वभाव, उसी प्रकार गंगा के किनारे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, और गंगा का जल दोनों पी रहे हैं, लेकिन अपने स्वभाव। हाँ, तो ये जो शिव जी है वो अपने मस्तक में गंगा जी को धारण करके रखते हैं, इसीलिए और महान बन गए। और शिव जी वैष्णव होने के नाते ये संसार के प्रति इतने उनका करुणा है, इतने दया है। जब समुद्र मंथन के समय हलाहल जहर निकल कर सारा संसार को नाश करने के लिए बह रही थी, सारे देवता असुर लोग जाकर के शिव जी को बताएं, अच्छी चीज दोनों ले लिए बंटोरा करके। जब समुद्र मंथन में अच्छे अच्छे चीजें निकले तो देवता असुर दोनों ले लिए, और ये जो हलाहल जहर निकला वो शिव जी के भाग में गया। और शिव जी ये सारा संसार को बचाने के लिए हलाहल जहर को पी भी गए, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ। ब्रह्म संहिता में ये ब्रह्मा जी भी गाते हैं, क्या है, गोलक एव निज धामि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेसु तेसु तेते प्रभाविनी चया बीताख्येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हे गोविंद, मैं आपका भजन इसलिए ये करता हूँ क्योंकि आपका धाम जो सर्वोच्च है, और उस आपके धाम के ठीक नीचे महेश धाम है, देवी महेश, ये देवी धाम है, देवी धाम के बाद महेश, उसके बाद वैकुंठ है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में ये बात बताते हैं। तो ये जो शिव जी है इतने महान है, इतने महान है, फिर भी कभी कभी उनको असुरों की साथ देना पड़ता है, क्योंकि तमोगुण के अध्यक्ष है। शिव जी कौन है? तमोगुण के लीडर है। और तमोगुण जो इग्नोरेंस ऑफ जो अज्ञान है वो तमोगुण का तमोगुण को दिखाता है, और ऐसे तमोगुण का लीडरशिप करते हैं शिव जी। और कभी कभी तमोगुण में आकर के ये असुरों को ऐसे बर दे देते हैं, जैसे रावण है, शिव जी का बहुत बड़े भक्त था, लेकिन जब राम के साथ टक्कर लगाया फिर शिव जी साइड हो गए, क्योंकि शिव जी पंचमुख में एक भजन है। ब्रह्मा जी चार मुख में भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन शिव जी पांच मुख में भगवान का गुण को गा रहे हैं। इसीलिए अपने प्रभु के, अपने स्वामी के ऊपर जब कोई असुर हंगामा करता है, भले वो असुर अपने शिष्य भी हो, वो साइड हो जाते हैं। ये गुरु का, जब भगवान का भजन से कोई हटता है तो फिर गुरु का कृपा कैसे प्राप्त करेगा? तो शिव जी एक महान गुरु है रुद्र संप्रदाय के। जब शिव जी देखते हैं ये मेरा आश्रित भगवान के साथ दुश्मनी कर रहा है, तो फिर वो ऐसे शिष्यों का साथ नहीं देते हैं शिव जी। तो यहां पर हमें ये बात को सीखना है। जब जय अभिमनु का मृत्यु का कारण यही भी बना था। अभिमनु कौन था? न चंद्र का पुत्र। जब भगवान इस संसार में आए थे अपनी लीला प्रकट करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए, सारे देवता अपने अंशों से ये संसार पर प्रकट हुए थे, तो चंद्रदेव के अंश से अभिमनु प्रकट हुए थे। और अभिमनु को जब चंद्रदेव प्रकट किए, वो भी कह दिए थे मैं मेरा पुत्र को भेजना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, ये अच्छे कार्य में पीछे नहीं हटना चाहिए। देवताओं ना असुरों को मारना देवताओं का काम है, लेकिन मैं ये कह देता हूँ हाँ, तो मैं मेरा पुत्र को भेजता हूँ। अभिमनु जो है चंद्र का पुत्र था बर्चा, अभिमन चंद्र का पुत्र था बर्चा, बर्चा अभिमनु वर्ग के संसार में प्रकट हुए थे हाँ, लेकिन चंद्र ये बात भी कह दिए थे भले मैं भेज रहा हूँ लेकिन वो अधिक दिन मनुष्य शरीर में नहीं रहेगा। और यही बात हुआ, अभिमनु बहुत अल्प उम्र में ये संसार छोड़ करके चला गया। तो यही अभिमन्यु का मृत्यु का कारण बना था शिव जी का एक भक्त जयद्रथ। जब पांडव हार करके काम्यक वन में रह रहे थे ठीक उसी समय जयद्रथ जो कि धृतराष्ट्र का दामाद था, ये जयद्रथ असुर था हाँ, तो धृतराष्ट्र का दामाद था। तो पांडव लोग जब हार करके काम्यक वन में रह रहे थे तो पांडव लोग कुछ फलमूल लाने के लिए जंगल में चले गए थे और द्रौपदी अकेले हाँ कुटिया में रह रहे थे। ये जयद्रथ उसी समय वहां पर पहुंचा और द्रौपदी को देखा और द्रौपदी के ऊपर द्रौपदी को लेके जाने के लिए प्रयास किया और लेके चला भी गया। और जब लेके कुटिया से लेके चला गया तो उसी समय पांडव लोग आकर के जब पहुंचे देखे कुटिया में द्रौपदी नहीं है तो और जो बाकी थे तो बता दिए जयद्रथ आकर के लेके चला गया हाँ। तो पांडव लोग पीछा करते हैं और जयद्रथ का साथ युद्ध होती है तो सारे जयद्रथ का सेना जो मारे जाते हैं और अकेला जयद्रथ अपने जीवन को बचाने के लिए भागता है। ले भीम और अर्जुन और जयद्रथ का पीछा करते हैं और पीछा करके उनको भीम तो मार देने वाले ही थे, भीम जयद्रथ को उसी समय मार ही देने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने उनको याद दिलाए कि देखो भीम भैया हाँ महाराज का आदेश को याद करो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भीम और अर्जुन को आदेश दिए थे ये बात याद रखो, ये हमारे जो पिता है ताऊ है, ताऊ कहते हैं ना हाँ, ये हमारे ताऊ के कन्या के पति है, तो हमारा बहन विधवा न हो जाए। दुस्साला धृतराष्ट्र का कन्या का नाम था दुस्साला और दुस्साला का पति था जयद्रथ, तो युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को कहते कि हमारा बहन विधवा न हो जाए। तो और भीमसेन तो मार ही देने वाले थे लेकिन अर्जुन ने ये बात को याद दिलाया इसीलिए भीमसेन छोड़ दिए, मारे नहीं बांध करके लेकर के ला करके फेंक दिए युधिष्ठिर महाराज के सामने। जो पशु जैसे बंधा हुआ था जयद्रथ तो द्रौपदी और देख नहीं पाए, भले वो द्रौपदी के प्रति असत व्यवहार किए, द्रौपदी ऐसे एक स्त्री थी हाँ, इतने में सब होने के बाद भी हाँ, जैसे कि उनका पुत्र मारे गए हैं, कई कई ऐसे एक नारी बने वो महाभारत के भीतर ऐसे, और ये कलयुग में भी ऐसे नारी के ऊपर इतना हंगामा नहीं हुआ था, द्रौपदी के ऊपर जितने बड़ी विपत्ति आया था, आज के समय भी फिर इतने कष्ट होने के बाद भी भगवत भक्त होने के नाते हाँ, तो सबको क्षमा दिए, ये भक्तों के गुण है क्षमा देना हाँ। जब क्षमा कोई देता है वो उनका क्रोध दब जाता है हाँ, जो क्रोध को जीतना है तो क्षमा अपनाना है। तो जो फेंक दिए ला करके जयद्रथ को बांध करके भीमसेन और अर्जुन हाँ, तो जयद्रथ के हृदय में बहुत ना द्रौपदी के हृदय में बहुत करुणा आ गया, छोड़ दो बस हो गया, उसका दंड उसको मिल गया हाँ। लेकिन जयद्रथ को असुर हमेशा प्रतिशोध लेने के लिए हमेशा ये रहते हैं, कहते प्रतिशोध की भावना जो अग्नि है उनके भीतर हमेशा जलती रहती है। तो जय द्रौपदी भले माफ कर दिए लेकिन जयद्रथ हाँ हरिद्वार में चला गया और शिव जी का आराधना किया और शिव जी उनके आराधना में संतुष्ट होकर के उनके सामने प्रकट हो गए और शिव जी को क्या मांग रहा है ये जयद्रथ, युद्ध में मैं सारे पांडवों को मार दू। तो शिव जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है, पांडवों को कोई ना युद्ध में जीत सकता है ना कोई मार सकता है हाँ, एक ही दिन एक ही बात मैं कर सकता हूँ आपके लिए, अर्जुन को छोड़कर बाकी जो चार पांडव है बाकी चार पांडवों को एक दिन में युद्ध करते करते आप युद्ध में चार पांडवों को थोड़ा पीछे हटा सकते हो, मार तो नहीं सकते हो हाँ, ये अर्जुन को छोड़कर चार पांडवों को आप युद्ध में हटा सकते हो। और कोई बना अर्जुन अभिमन्यु का मृत्यु का कारण, क्योंकि द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह रचा गया था और वो समय वहां पर अर्जुन नहीं थे और अर्जुन के छोड़कर और बाकी पांडवों को चक्रव्यूह को तोड़ने की ज्ञान नहीं था, लेकिन वहां पर उपस्थित थे अभिमन्यु, अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेद करने की ज्ञान था लेकिन चक्रव्यूह के भीतर से बाहर आने की ज्ञान मालूम नहीं था। तो वहां पर जब वो सारे कुरु सेना पांडवों का सेना को संहार कर रहे थे, तो बाकी सारे भाई ने युधिष्ठिर महाराज को कहे कि आप अभिमन्यु को आज्ञा दे दो, हाँ, और अर्जुन ये चक्रव्यूह को ना अभिमन्यु और चक्रव्यूह को तोड़ दें। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये कहे मैं जानबूझकर अभिमन्यु को मृत्यु के मुख में नहीं डाल सकता, हाँ, अर्जुन यदि कल मुझे पूछेगा मैं उनका जवाब क्या दूंगा। फिर जब अभिमन्यु स्वयं का कि युधिष्ठिर महाराज को कि पिताजी हाँ यदि आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो आपके सामने सारे पांडव मारे जाएंगे, इसलिए मुझे आज्ञा दो। और सारे कहने के बाद युधिष्ठिर महाराज अभिमन्यु को आज्ञा दिया और चक्रव्यूह में चला गया। हाँ, लेकिन वो उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर महाराज भीमसेन नकुल सहदेव जा ही रहे थे, लेकिन वो जो चक्रव्यूह का दरवाजा है, जो गेट है, वही गेट के सामने जयद्रथ खड़ा हो गया। खड़ा होकर के हाँ युद्ध किया और ये चार पांडवों को रोक दिया, इसीलिए हाँ अभिमन्यु का मृत्यु हो गया था, इसीलिए कि शिव जी का उनको बर प्राप्त हुआ था जयद्रथ को। तो कभी कभी शिव जी भी अपने अपने आश्रितों को ऐसे बर देते हैं, वो भी बड़े झमेला में पड़ जाते हैं, बहुत बड़ा सृष्टि का बड़े ही गड़बड़ स्थिति में आ जाता है, फिर भगवान विष्णु को कुछ करना होता है। फिर भी इतने होते हुए भी शिव जी एक महान भक्त है। कभी भी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कह दिए तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन शिव जी को कभी नहीं कहे। शिव जी इतने महान भक्त है, भगवान विष्णु कभी भी नहीं कहा, लेकिन ब्रह्मा जी को कह दिए ये ऐसा ऐसा क्यों असुर को बर देते हो, ऐसा ऐसा कर वो बोलते हैं, लेकिन शिव जी को नहीं कहे। तो आज के दिन एक महान पवित्र दिन है, हमें शिव जी के चरण में जाना है और एक कण कृष्ण प्रेम की मांग करना है कि प्रभु कृपा करके आज के पवित्र दिन में हमें भी ये कृष्ण प्रेम की भूख है, तो ये कृष्ण प्रेम के बिना ये संसार की कष्ट सहन नहीं हो रही है, कृपा करके ये बूंद एक कण हमारे हृदय में आप दीजिए, हमें भी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सक्षम बन पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की नितय गौर प्रेमानंदे।